अध्याय 45 यरीहो का पतन। ये अध्याय यहोशू 5 आयत 13 से 15 6-7 पर आधारित है। इब्रियों ने कनान में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसे अपने अधिकार में नहीं किया था और मनुष्य की दृष्टि में उस पर स्वामित्व प्राप्ति का संघर्ष लंबा और कठिन होना निश्चित था। वो एक सशक्त जाति से जनपूर्ण था जो अपने भूखंड पर घुसपैठ का विरोध करने के लिए तैयार खड़े थे। सभी घराने एक दूसरे के साथ एक सर्वसामान्य संकट के भय से बंधे हुए थे। उनके घोड़े, लोहे के बने युद्ध रथ, देश के बारे में उनका ज्ञान और युद्ध में उनका प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाला था। और तो और, ये प्रदेश कीलों से सुरक्षित था, जिसकी शहरपना आकाश से बातें करती है। व्यवस्था विवरण 9:1। केवल शक्ति के आश्वासन में, जो उनकी अपनी नहीं थी, इज़राइल आसान संघर्ष में सफलता की अपेक्षा कर सकते थे। प्रवेश का सबसे शक्तिशाली गढ़ यरीहो का विशाल और समृद्ध शहर उनके बिल्कुल सामने था, लेकिन गिलगल में उनके पड़ाव से कुछ दूरी पर था, एक उपजाऊ तराई की सीमा पर जो विभिन्न उपजों से भरपूर था, जिसके महल और मंदिर अवगुण व भोग विलास के केंद्र थे। अपने विशाल परकोटों के पीछे ये घमंडी शहर इज़राइल के परमेश्वर को चुनौती देता था। यरीहो चंद्रमा की देवी एश्टरोथ के लिए विशेष रूप से समर्पित मूर्ति पूजा का मुख्य स्थान था। कनानियों के धर्म में जो सबसे अधिक भ्रष्टाचारी और नीच था, वो यहां केंद्रित था। इज़राइल के लोग, जिनके मन में बेतपोर में उनके पाप के भयानक परिणाम अभी भी ताजा थे, इस अधर्मी शहर को केवल भय और घृणा से देख सकते थे। यहोशू की दृष्टि में यरीहो को शक्तिहीन करना कनान पर विजय का पहला चरण था, लेकिन सर्वप्रथम उसने ईश्वरीय मार्गदर्शन का आश्वासन मांगा, जो उसे प्रदान किया गया। इज़राइल के परमेश्वर से उसके लोगों के आगे आगे जाने के लिए प्रार्थना और मनन करने छावनी से दूर जाकर उसने विशाल डील, डॉल और रोबदार उपस्थिति, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक हथियारबंद योद्धा को देखा। यहोशू ने उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या बैरियों के पक्ष का है? और उसे उत्तर मिला, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। अपनी जूती पांव से उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। यहोशू को दी गई इस आज्ञा ने, जो होरेब में मूसा को भी दी गई थी, रहस्यमयी आगंतुक का वास्तविक चरित्र प्रकट कर दिया। वो मसीह था, अत्यधिक प्रशंसनीय एकमात्र, जो इज़राइल के अगुवे के सम्मुख खड़ा था। आदरयुक्त भय के साथ यहोशू ने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया और उसने ये आश्वासन सुना, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। और उसने नगर के बंदीकरण के लिए निर्देश प्राप्त किए। पवित्र आज्ञा का पालन करते हुए यहोशू ने इज़राइल की सेना का संचालन किया। कोई आक्रमण नहीं करना था, उन्हें केवल परमेश्वर के संदूक को उठाए हुए और नरसिंगे फूंकते हुए नगर के चारों ओर चक्कर लगाना था। सर्वप्रथम आए योद्धा, चुने हुए पुरुषों का एक समूह, जो इस बार अपने कौशल या उत्कृष्ट निपुणता से नहीं, वरन परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन द्वारा जीतने के लिए आए। नरसिंगे लिए हुए 7 याजकों ने उनका अनुसरण किया। फिर परमेश्वर का संदूक, जो पवित्र महिमा से घिरा हुआ था और जिसे पवित्र कार्यभार को दर्शाती हुई पोशाक पहने याजकों ने उठाया हुआ था, इज़राइल की सेना प्रत्येक गोत्र अपने झंडे के साथ पीछे पीछे हो ली। ऐसा था वो जुलूस जिसने उस नगर के चारों ओर चक्कर लगाया। यरीहो की सड़कों में प्रतिध्वनित होती और पहाड़ों में गूंजता नरसिंगों का प्रभावशाली स्वर और विशाल सेना के पच्चापों के अलावा अन्य कोई आवाज सुनाई नहीं दी। परिक्रमा समाप्त कर सेना चुपचाप अपने तंबुओं में लौट आई और संदूक को पवित्र मंडप में अपने निर्धारित स्थान पर रख दिया गया। नगर के चौकीदार ने सावधान होकर और आश्चर्य से प्रत्येक गतिविधि को अंकित किया और अधिकारियों को सूचित किया। वे इस प्रदर्शन का अभिप्राय नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने इस विशाल सेना को, पवित्र संदूक और उसकी सेवा में याजकों को दिन में एक बार नगर की परिक्रमा करते देखा, तो इस दृश्य के रहस्य ने पुरोहित और प्रजा दोनों के हृदयों को भय से भर दिया। वे फिर से अपनी सशक्त सुरक्षा का निरीक्षण करते, यह सोचते हुए कि वे निश्चय ही सफलतापूर्वक सबसे शक्तिशाली आक्रमण का प्रतिरोध कर सकते थे। कईयों ने इस धारणा का उपहास किया कि उन असाधारण प्रदर्शनों के माध्यम से कोई क्षति पहुंच सकती थी। अन्य श्रद्धायुक्त भय से भर गए जब उन्होंने उस जुलूस को प्रतिदिन नगर की परिक्रमा करते हुए देखा। उन्होंने स्मरण किया कि इन लोगों के सम्मुख लाल समुद्र के दो भाग हो गए थे और उनके लिए यर्दन नदी के बीच से मार्ग निकाला गया था। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनके लिए और कौन से आश्चर्य कर्म करने को था। 6 दिनों तक इजरायली सेना ने नगर की परिक्रमा की। 7वां दिन आया और प्रातःकाल की पहली किरण के साथ यहोशू ने परमेश्वर की सेनाओं को संचालित किया। अब उन्हें यरीहो की 7 बार परिक्रमा करने का निर्देश दिया गया और नरसिंगे के शब्द पर जय जयकार करने को कहा गया, क्योंकि यहोवा ने वो नगर उनको दे दिया था। विशाल सेना समर्पित प्राचीरों की विधिवत परिक्रमा करती रही। प्रातःकाल की निस्तब्धता को खंडित करने वाले नरसिंगे के कभी कभी आने वाले स्वर और कई पैरों की नपी तुली चलने की आवाज के सिवाय सब कुछ शांत था। प्राचीरों पर तैयार पहरेदार बढ़ते हुए डर से देखते हैं कि जैसे ही प्रथम परिक्रमा पूरी हुई, दूसरी प्रारंभ हुई, फिर तीसरी, उसके बाद चौथी, फिर 5वीं और फिर 6ठी। इन रहस्यमय गतिविधियों का लक्ष्य क्या हो सकता था? कौन सी प्रभावशाली घटना आसन्न थी? उन्हें अधिक समय तक रुकना नहीं पड़ा। जैसे ही 7वीं परिक्रमा समाप्त हुई, लंबा जुलूस रुक गया। नरसिंगे, जो कुछ समय के लिए शांत थे, अब इतने जोर के साथ फूंके गए कि धरती कांप उठी। ठोस पत्थर की दीवारें अपने परकोटों और विशाल मीनारों के साथ डगमगाए और अपनी नींव से ऊपर उठ गए और घड़ाक की आवाज के साथ पृथ्वी पर ढेर हो गए। यरीहो के निवासी डर से शक्तिहीन हो गए और इजराइल की सेना ने आगे बढ़कर नगर को अपने अधिकार में ले लिया। इजराइलियों ने अपनी सामर्थ्य से विजय प्राप्त नहीं की थी। विजय पूरी तरह से परमेश्वर की हुई थी और भूमि के पहले फल की तरह नगर और जो कुछ भी उसमें था यहोवा के लिए बलिदान के रूप में अर्पण किया जाना था। इजराइल को इस बात से प्रभावित करना था कि कनान के अधीनीकरण में उन्हें स्वयं के लिए नहीं लड़ना था, वरन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का माध्यम होना था। अपनी पदोन्नति या धन की चाह न रखकर उनके राजा यहोवा को महिमा पहुंचानी थी। अधिकरण से पूर्व आदेश दिया गया था और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना। कहीं ऐसा न हो कि अर्पण की हुई वस्तु में से तुम कुछ ले लो और इस प्रकार इजराइल छावनी को भ्रष्ट करके उसके कष्ट में डाल दो। नगर के सभी वासियों को और उसमें रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी को, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सभी को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। भेदियों की शपथ के अनुसार केवल निष्ठावान राहाब और उसके घराने को जीवित छोड़ा गया। स्वयं नगर को जला दिया गया, उसके महल और मंदिर, भोग विलास की वस्तुओं सहित भव्य भवन, भारी भारी पर्दे और कीमती वस्त्र सब अग्नि को समर्पित कर दिए गए। जो आग में भस्म नहीं हो सकता था, चांदी, सोना, पीतल और लोहे के पात्र, उनको यहोवा के भवन की धर्म क्रिया के लिए समर्पित कर दिया गया। नगर का स्थान ही श्रापित कर दिया गया। यरीहो को गढ़ के रूप में कभी भी निर्मित नहीं होना था। ईश्वरीय शक्ति द्वारा गिराई गई दीवारों को पुनः खड़ी करने की परिकल्पना करने वाला तक दंड का भागी होगा। संपूर्ण इसराइल की उपस्थिति में यह पवित्र घोषणा की गई, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका ज्येष्ठ पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा।
यरीहो के लोगों का संपूर्ण विनाश। कनान वासियों से संबंधित मूसा द्वारा पहले दिए गए आदेशों का पूरा होना था, तो उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। व्यवस्था विवरण 7 आयत 21। कई लोगों को लगता है कि ये आज्ञा बाइबल के अन्य अंशों में प्रेम और करुणा रखने की आज्ञा के विपरीत है, लेकिन यथार्थ में ये भलाई और अनंत बुद्धिमता का आदेश है। उन्हें न केवल सच्चे धर्म के उत्तराधिकारी होना था, वरन उसके सिद्धांतों को संपूर्ण जगत में प्रसारित करना था। कनानियों ने स्वयं को अत्यंत नीचतापूर्ण व भ्रष्ट अधर्म को समर्पित कर दिया था, और इसलिए ये अनिवार्य था कि प्रदेश को उससे रहित किया जाए जो परमेश्वर के अनुग्रहकारी प्रयोजनों के परिपूर्ण होने में बाधा डाले। कनान वासियों को प्रायश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। 40 वर्ष पूर्व लाल समुद्र को खोले जाने और मिस्र पर भेजी गई विपत्तियों ने इसराइल के परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण दिया था, और अब मिद्यान के राजाओं की गिलाद और बाशान की पराजय ने भी प्रमाणित कर दिया था कि यहोवा सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। बालपोर के घृणास्पद रीति रिवाजों में सम्मिलित होने के कारण दंडाज्ञाओं में परमेश्वर के चरित्र की पवित्रता और अधर्म के प्रति उसकी घृणा व्यक्त की गई थी। यरीहो के वासी इन सभी घटनाओं से परिचित थे और कई राहाब के विश्वास को भी जानते थे, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया कि वो यहोवा इसराइल का परमेश्वर ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। जल प्रलय से पूर्व के वासियों की भांति कनानी भी स्वर्ग को अपमानित और पृथ्वी को दूषित करने के लिए जीवित थे, और प्रेम और न्याय दोनों की यही मांग थी कि परमेश्वर के विरोधियों और मनुष्य के शत्रुओं का तत्परता से अंत किया जाए। कितनी आसानी से इसराइल की सेनाओं ने यरीहो की दीवारों को धराशाही कर दिया। वो घमंडी प्रदेश जिसके परकोटों ने 40 वर्ष पूर्व अविश्वासी भेदियों को भयभीत कर दिया था। इसराइल के सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा था, मैंने यरीहो का नगर तेरे हाथों में दे दिया। उस वचन के आगे मानवीय शक्ति प्रभावहीन थी। इब्रानियों 11 आयत 30 में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की दीवारें गिर गईं। परमेश्वर की सेना के कप्तान ने केवल यहोशू से संपर्क किया। उसने स्वयं को पूरी प्रजा पर प्रकट नहीं किया, और ये उन पर निर्भर करता था कि वे यहोशू के शब्दों पर विश्वास करें या संदेह करें, परमेश्वर के नाम से उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करें या उसके अधिकार का तिरस्कार करें। परमेश्वर के पुत्र के नेतृत्व में उनकी सेवा में उपस्थित स्वर्गदूतों की सेना को वे देख नहीं सकते थे। उन्होंने तर्क दिया होगा, ये गतिविधियां कितनी निरर्थक हैं, और मेढ़ों के सींग के नरसिंगे फूंकते हुए शहर की प्राचीरों की परिक्रमा करने का उपक्रम कितना मूर्खतापूर्ण है। उन ऊंचे ऊंचे गढ़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दीवारों को अंततः गिराने से पूर्व इस धर्म किया को जारी रखने की योजना ने ही इसराइलियों में विश्वास के विकास के लिए अवसर प्रदान किया। उनके मनों पर यह प्रभाव डालना था कि उनकी शक्ति या सामर्थ्य मनुष्य की बुद्धिमता में नहीं, ना ही उसकी सामर्थ्य में है, वरन केवल उनके उद्धार देने वाले परमेश्वर में है। इस रीति से उन्हें अपने पवित्र अगुवे पर पूर्ण रूप से निर्भर होने का अभ्यस्त होना था। परमेश्वर उस पर विश्वास रखने वालों के लिए महान कार्य करेगा। उसके तथाकथित लोगों के पास अधिक शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वे अपनी बुद्धिमत्ता में अधिक विश्वास करते हैं, और परमेश्वर को उनके पक्ष में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने का अवसर नहीं देते। यदि उसके बच्चे उसमें पूरी तरह विश्वास करें और निष्ठापूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो वो प्रत्येक आपातकालीन स्थिति में अपने विश्वासी बच्चों की सहायता करेगा। यरीहो के पतन के तत्पश्चात यहोशू ने ए नगर पर आक्रमण करने का संकल्प किया। ए यर्दन की तराई के पश्चिम की ओर कुछ मीलों की दूरी पर घाटियों के बीच एक छोटा सा शहर है। इस स्थान पर भेजे गए गुप्तचर ये सूचना लेकर लौटे कि वहां के निवासी संख्या में कम थे और उन्हें पराजित करने के लिए छोटी सी सेना ही पर्याप्त होगी। परमेश्वर द्वारा उनके लिए प्राप्त की गई विजय ने इसराइलियों को आत्मविश्वासी बना दिया। परमेश्वर ने उन्हें कनान का प्रदेश देने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और वे इस बात को समझना भूल गए कि केवल ईश्वरीय सहायता ही उन्हें सफलता प्राप्त करवा सकती थी। यहोशू ने भी परमेश्वर से परामर्श लिए बिना ऐ पर विजय की योजना तैयार कर ली। इसराइली स्वयं की शक्ति की प्रशंसा करने लगे थे और अपने शत्रुओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक आसान विजय की अपेक्षा थी
और ऐसा विचार किया गया कि उस नगर को अधिकृत करने के लिए 3,000 पुरुष पर्याप्त थे। वे नगर के फाटकों के समीप पहुंचे, लेकिन उन्हें अत्यंत दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अपने शत्रुओं की संपूर्ण तैयारी और संख्या से भयभीत होकर वे घबराहट में सीधे ढलान पर भाग खड़े हुए। कनानी उनका तेजी से पीछा कर रहे थे, तब ऐ के रहने वालों ने अपने फाटक से पीछा करके उतराई में उन्हें मार गिराया। संख्या की दृष्टि से क्षति थोड़ी ही थी, केवल 36 पुरुष मारे गए, लेकिन पूरी प्रजा के लिए पराजय हतोत्साहक थी। लोगों के हृदय पिघल गए और पानी की तरह हो गए। ये पहली बार हुआ था कि कनानियों के साथ उनका वास्तविक युद्ध हुआ, और यदि इस छोटे से नगर के प्रतिरोधियों ने उन्हें भाग खड़े होने को विवश कर दिया था तो उनके सम्मुख महान संघर्ष का क्या परिणाम होगा। यहोशू ने इस असफलता को परमेश्वर की अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, और दुख और भय से प्रभावित उसने अपने वस्त्र फाड़े और संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहोशू ने परमेश्वर से कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया? क्यों हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है? क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमें घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा की ओर से उत्तर था, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइल ने जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधवाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। ये समय था तत्पर और निश्चित कार्यवाही का, ना कि निराश होने या विलाप करने का। छावनी में गुप्त पाप था, और परमेश्वर के लोगों के साथ उसकी आशीष और उपस्थिति होने से पूर्व उस पाप को ढूंढकर दूर करना था। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यनाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर की आज्ञा की अवमानना उसने की थी, जिसे उसकी दंडाज्ञा को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया था, और आज्ञा उल्लंघन करने वाले के दोष के लिए पूरी मंडली को उत्तरदायी ठहराया गया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से तो ले ही लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। यहोशू को उसे ढूंढ निकालने और अपराधी को दंड देने का आदेश दिया गया। दोषी की पहचान करने के लिए चयन का प्रयोग किया जाना था। अपराधी की ओर प्रत्यक्ष रूप से संकेत नहीं करके कुछ समय तक विषय को संदेहास्पद रखा जाना था, ताकि लोगों को स्वयं में विद्यमान पापों के लिए उत्तरदायी होने का एहसास हो, जिससे कि वह परमेश्वर के सम्मुख दीन हो और अपने हृदयों को टटोले। भोर होते ही यहोशू ने गोत्रों के अनुसार लोगों को एकत्रित किया, और वह प्रभावशाली व पवित्र विधि प्रारंभ हुई। कई चरणों में खोज की गई, भयावह कसौटी कसती गई। सबसे पहले गोत्र को, फिर परिवार को, फिर घराने को और फिर पुरुष को पकड़ा गया, और यहूदा के गोत्र में से कर्मी के पुत्र आकान को इसराइल के कष्टकर के रूप में परमेश्वर की अंगुली द्वारा संकेत किया गया। उसके दोष को अविवादास्पद स्थापित करने के लिए और इस आरोप के लिए कोई आधार नहीं छोड़ने के लिए कि उसका दंड न्याय संगत नहीं था, यहोशू ने विधिवत रूप से आकान को सच्चाई स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। उस निंदनीय व्यक्ति ने अपने अपराध का पूर्ण अंगीकार किया, सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 रोकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तत्काल ही दूतों को तंबू में भेजा गया, जहां उन्होंने बताए हुए स्थान से मिट्टी हटाई, और उन्होंने देखा कि वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी थी। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और यहोवा के सामने रख दिया। दंडाज्ञा सुनाई गई और उसका तुरंत पालन किया गया। यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। आकान के पाप के लिए लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया था, और उन्होंने उसका परिणाम भुगता था,
और इस कारण उन्हें उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उसके दंड में भूमिका निभानी थी। सब इसराइलियों ने उस पर पथराव किया, फिर उस स्थान पर और उसके दंड के साक्ष्य के रूप में एक पत्थर का ढेर लगाया गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है, जिसका अर्थ है कष्ट। बाइबल में इतिहास की पुस्तक में उसका स्मृति पत्र लिखा गया है, आकोर, इसराइल को कष्ट देने वाला। पहला इतिहास 2:7। आकान का पाप परमेश्वर के सामर्थ्य के सबसे उत्तम प्रदर्शनों और सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर चेतावनियों को चुनौती देते हुए किया गया। तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहराकर बाद में उसकी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इसराइल छावनी को भ्रष्ट करके उसके कष्ट में डाल दो। ये घोषणा समस्त इसराइल के लिए थी। ये आज्ञा उनके आश्चर्यजनक रूप से यर्दन नदी पार करने के तुरंत बाद, लोगों के खतने की विधि द्वारा, परमेश्वर की वाचा की स्वीकृति देने के बाद, फसह का पर्व मनाने के बाद और परमेश्वर की सेना के कप्तान वाचा के स्वर्गदूत के प्रकट होने के बाद दी गई। इसके पश्चात यरीहो को पराजित किया गया, जो इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को विनाश निश्चित था। ये तथ्य कि इसराइल की विजय केवल ईश्वरीय शक्ति से संभव हुई थी और ये कि यरीहो का स्वामित्व उन्हें अपनी निजी योग्यता से प्राप्त नहीं हुआ था, इस आज्ञा को महत्वपूर्ण ठहराता था कि उनके लिए लूट की वस्तुओं को ग्रहण करना प्रतिबंधित था। परमेश्वर ने अपने वचन के सामर्थ्य से इस गढ़ को जीता था। विजय उसकी थी और नगर और उसमें की सभी वस्तुएं उसको समर्पित की जानी थी। लाखों इसराइलियों में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने दंडाज्ञा और विजय की घड़ी में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया था। आकान का लालच शिनार के कीमती वस्त्र को देखने से जागृत हुआ, यहां तक कि जब उसका इस कारण मृत्यु से आमना सामना हुआ, उसने इसे शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना कहा। एक पाप ने दूसरा पाप करने की प्रेरणा दी और परमेश्वर के भंडार को समर्पित सोने और चांदी को हथिया लिया। उसने परमेश्वर को कनान प्रदेश की भूमि के पहले फलों से वंचित रखा। आकान को विनाश तक पहुंचाने वाले घातक पाप की जड़ें लालच में थी, जो सब पापों में सबसे सामान्य और सहज माना जाता है, जबकि अन्य अपराधों को जांच पड़ताल और दंड का सामना करना पड़ता है। दसवीं आज्ञा का खंडन शायद ही कभी निंदा का विषय होता है। इस पाप की घोरता और इसके भयानक परिणाम आकान के इतिहास के सबक हैं। लालच धीमे धीमे विकसित होने वाला पाप है। आकान ने लाभ के लालच को संजोया था, जब तक कि वह एक आदत बन गया और उसे ऐसी जंजीरों में जकड़ा जिन्हें तोड़ना लगभग असंभव था। इस पाप को बढ़ावा देते हुए इसराइल पर विपत्ति लाने के विचार पर वह भयभीत हो गया होगा, लेकिन उसका प्रत्यक्ष ज्ञान पाप से शिथिल हो गया था और प्रलोभन के आगे वह एक आसान शिकार हो गया।
ऐसी ही सुस्पष्ट और विधिपूर्ण चेतावनियों के होते हुए भी क्या आज भी ऐसे ही पाप नहीं किए जाते? जिस प्रकार आकान को यरीहो की लूट की वस्तुओं को हथियाने पर प्रतिबंध था, उस प्रकार हमें भी लालच करना प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध है। परमेश्वर ने उसे मूर्ति पूजा घोषित किया है। हमें चेतावनी दी गई है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:24। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लूका 12:15। तुम में किसी प्रकार के लोभ की चर्चा तक न हो। इफिसियों 5:3। हमारे सम्मुख आकान, यहूदा, हनन्या और सफीरा का भयानक अंत है। इन सब के पीछे सुबह का तारा लूसीफेर का अंत है, जिसने पदोन्नति के लालच में स्वर्ग के परम आनंद और धवलता को हमेशा के लिए खो दिया। फिर भी इन सभी चेतावनियों के बावजूद लालच बहुत फैला हुआ है। सभी स्थानों पर उसका लिसलिसा पथ दिखाई देता है। ये परिवारों में असंतोष और मतभेद उत्पन्न करता है। ये गरीबों में धनवानों के प्रति ईर्ष्या और घृणा को उकसाता है। ये धनवानों का निर्धनों के प्रति कष्ट कर अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। और ये पाप केवल संसार में ही नहीं, वरन कलीसिया में भी विद्यमान है। यहां भी दशवांश और चंदे में स्वार्थ, धन लोलुपता, ठगी, धर्मदान की उपेक्षा और परमेश्वर के भाग की चोरी का प्रचलन कितना सामान्य है। बड़े दुख की बात है कि कलीसिया के प्रतिष्ठित लोगों में भी कई आकान हैं। कई कली व्यक्ति गिरजाघर में आते हैं, परमेश्वर की मेज पर बैठते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में अवैध लाभ की वस्तुएं छुपी होती हैं, वे वस्तुएं जो परमेश्वर द्वारा श्रापित हैं। शिनार के सुंदर वस्त्र के लिए लाखों, स्वर्ग के लिए उनकी आशा और अंतःकरण की सहमति का त्याग कर देते हैं। कई लोग अपनी सत्यनिष्ठा और सार्थकता हेतु उनकी योग्यता का चांदी के सिक्कों की थैली के लिए सौदा कर लेते हैं। कष्ट उठाते हुए दरिद्रों की पुकार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सुसमाचार का प्रकाश अपने मार्ग में बाधित होता है। मसीही व्यवसाय को झुठलाने वाली प्रथाएं सांसारिक व्यक्तियों के तिरस्कार को सुलगाता है, लेकिन फिर भी लालची व्यवसायी निधि को ढेर लगाना जारी रखता है। मलाकी में परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। आकान के पाप के कारण संपूर्ण राष्ट्र का अनर्थ हुआ। एक व्यक्ति के पाप के कारण परमेश्वर कलीसिया से तब तक अप्रसन्न रहेगा जब तक पाप को ढूंढकर दूर न कर दिया जाए। कलीसिया को जिस प्रभाव से सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, वह प्रत्यक्ष विरोधियों, अधर्मियों या मूर्ति पूजकों से नहीं, वरन मसीह के असंगत आचार्यों के प्रभाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। यही वे लोग हैं जो इज़राइल के परमेश्वर की आशीषों पर रोक लगा देते हैं और उसके लोगों को शक्तिहीन कर देते हैं। जब कलीसिया कठिनाई में होती है, जब उदासीनता और आध्यात्मिक अवनति विद्यमान रहती है और परमेश्वर के शत्रुओं को जीतने का अवसर देती हैं, तब अपनी अप्रसन्न अवस्था पर रोने और मुट्ठी बंद करने के बजाय उसके सदस्यों को पता लगाना चाहिए कि कहीं उनकी छावनी में कोई आकान तो नहीं। दीनता और आत्मविश्लेषण के साथ प्रत्येक को परमेश्वर की उपस्थिति को बाहर रखने वाले गुप्त पापों को पहचानना चाहिए।
आकान ने अपना दोष स्वीकार किया, लेकिन उसके अंगीकार करने से उसको लाभ होने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने इज़राइल की सेना को ऐसे पराजित और हतोत्साहित होकर लौटते देखा था, लेकिन फिर भी उसने आगे आकर अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। उसने यहोशू और इज़राइल के पुरनियों को अकथनीय दुख के साथ पृथ्वी पर झुके हुए देखा था। यदि उसने उस समय अपना पाप स्वीकार किया होता, तो उसने वास्तविक प्रायश्चित का कुछ प्रमाण दिया होता, लेकिन वो तब भी चुप रहा। उसने किए हुए महान पाप की घोषणा सुनी थी और उस पाप के स्वभाव का स्पष्ट विवरण भी सुना था, लेकिन उसके होठ पर मानो ताला लगा हुआ था। फिर औपचारिक जांच पड़ताल की गई। उसकी आत्मा किस प्रकार भय से कांप उठी जब उसके गोत्र की ओर संकेत किया गया, फिर उसके परिवार और फिर घराने को। लेकिन तब भी उसने अंगीकार के शब्द ना कहे जब तक कि परमेश्वर ने उस पर अंगुली नहीं रखी। फिर जब उसका पाप और छुपाया नहीं जा सकता था, उसने सच्चाई को स्वीकार किया। कितनी बार ऐसे पाप स्वीकरण किए जाते हैं? तथ्यों को उनके प्रमाणित होने के पश्चात स्वीकार करने और उन पापों का अंगीकार करने में, जिनसे केवल हम और परमेश्वर परिचित हैं, बहुत अंतर है। यदि आकान को ये आशा नहीं होती कि पापों का अंगीकार करने से वो अपने अपराध के परिणाम को रोक लेगा, तो उसने कभी अंगीकार नहीं किया होता। लेकिन उसके पाप के अंगीकरण से केवल ये प्रमाणित हुआ कि उसको दिया गया दंड न्यायसंगत था। पाप के लिए कोई वास्तविक प्रायश्चित नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं था और ना ही पाप के प्रति घृणा थी। प्रत्येक मनुष्य से संबंधित जीवन या मृत्यु के निर्णय के पश्चात जब वे परमेश्वर के न्यायालय के सम्मुख खड़े होंगे, तब दोषियों द्वारा ऐसे ही पाप अंगीकरण किए जाएंगे। उसी पर आने वाले परिणाम उसे अपने पाप को स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। दंडाज्ञा का भयावह आभास और तिरस्कार की भयानक अनुभूति के द्वारा आत्मा ऐसा करने के लिए विवश हो जाएगी। लेकिन ऐसे पाप अंगीकरण पापी को बचा नहीं सकते। जब तक वे अपने पापों को अपने सहवासियों से छुपा सकते हैं, कई लोग आकान की तरह
सुरक्षित महसूस करते हैं और स्वयं को संतोष दिलाते हैं कि परमेश्वर उनके अधर्म को अंकित करने में कठोर नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी होगी जब उनके पाप उन्हें उस दिन ढूंढ निकालेंगे जब वे कभी भी बलिदान या भेंट से पवित्र नहीं हो सकेंगे। जब स्वर्ग के अभिलेख खोले जाएंगे, न्यायाधीश मनुष्य को उसके पाप शब्दों में घोषित नहीं करेगा, वरन एक मर्मज्ञ दोष विभावक दृष्टि डालेगा और प्रत्येक कर्म जीवन का प्रत्येक लेन देन अपराधी की स्मृति पर व्यापक प्रभाव डालेगा। जैसे कि यहोशू के दिनों में किया गया, इस व्यक्ति को गोत्र से लेकर परिवार तक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अपने होंठ उसके पाप का अंगीकार करेंगे। वो पाप जो मनुष्य की जानकारी से छुपे हुए थे, पूरे जगत में घोषित किए जाएंगे।